કેટલા એ તેના એ જવાબો આપશે. તો આપણે તરત જ શરૂ કરીએ છીએ. એક પ્રશ્ન છે, હાલના સમયમાં સત્તા અને સંપત્તિ આ બે શક્તિ સામે સમાજે શું કરવું? હાલની પરિસ્થિતિ વિપરીત છે, તો આપ યોગ્ય રસ્તો સૂચવશો. બીજો પ્રશ્ન છે, પ્રાણ ઓર આત્મા મેં ફર્ક ક્યા હૈ? પ્રસંગ આના, ધક્કા લગના, ઇસકા મતલબ ક્યા? કલ્યાણકારી કામ સે સામાજિક જીવન સુખકારી શાંતિમય ક્યો નહીં બન સકતા? ક્રાંતિકારી કામ કી ક્યા જરૂરત હૈ? બાય ઇન્ક્રીઝિંગ વોન્ટ્સ ધી સોસાયટી ઇઝ ફોર્સ ટુ પ્રોડ્યુસ મોર, હેન્સ મોર વર્ક ફોર મેન ઇન ધી સોસાયટી. ઇઝન્ટ ધીસ એપ્રોચ રાઇટ ફોર રિમૂવિંગ પોવર્ટી એન્ડ અનએમ્પ્લોયમેન્ટ? In present context, isn't the family planning the number one priority social work?
પ્રશ્ન તો એટલે હૈ કે શાયદ પડને મેં સમય નિકલ જાયેગા, ઇસમે કુછ વિવેક કરના પડેગા. शुरू में एक निवेदन कर दूं, निवेदन यह है कि सारे प्रश्नों के उत्तर मैं नहीं दे सकता और सारे प्रश्नों के उत्तर हो भी नहीं सकते. जीवन में हर प्रश्न नया होता है क्योंकि जीवन पुराना नहीं, प्रश्न देखने में पुराना मालूम होता है लेकिन असलियत उसकी नई होती है, इसलिए उसका उत्तर खोजना होता है. बना बनाया उत्तर काम नहीं देता. तो कुछ उत्तर आप लोगों के साथ बैठकर खोजूंगा, जितने थोड़े में हो सकेगा उतने थोड़े में. दूसरी एक बात और कह दू, वो यह है कि यह प्रश्न आप इस दृष्टि से न पूछें कि मेरे उत्तर अंतिम होंगे. जैसे ज्योतिषी से पूछते हैं या किसी साधु संत से पूछते हैं. पुराने ग्रीक में डेल्फी का एक मंदिर था, वहां एक ओरेकल रहता, उस ओरेकल से जाकर सारे प्रश्न पूछे जाते थे और उसके जवाब लोग श्रद्धा पूर्वक मानते थे. यह सब हमारे समाज के लिए आवश्यक भी नहीं है और उचित भी नहीं, इसलिए एक एक प्रश्न को मैं लूंगा. इनमें से जो प्रश्न आत्मा, ब्रह्म, ईश्वर, माया, पुनर्जन्म, स्वर्ग, इन विषयों के बारे में होंगे उनके जवाब मैं नहीं दूंगा क्योंकि मैं जानता ही नहीं. जो मैं जानता नहीं हूं उनके जवाब कैसे दे सकता हूं? इनमें से ईश्वर को मैं मानता हूं लेकिन क्यों मानता हूं मैं नहीं कर सकता, इसलिए उस विषय के भी जो प्रश्न है उनके उत्तर मैं दूंगा नहीं. प्रश्न आप भले ही सुन लें. तो इसमें एक प्रश्न है कि सत्ता और संपत्ति का मुकाबला हम आज के समाज में कैसे करें. अब मैं कैसे कहूं, मैं तो सारे भाषणों में ही कहता आया हूं कि किस तरह से किया जाए, और भाषण सुनने के बाद यह प्रश्न शेष रह जाता है। तो कुछ मेरी बुद्धि बहुत काम नहीं करती। मैंने कहा यह है कि सत्ता और संपत्ति का निराकरण करने का आरंभ अपने से होगा, हम अपने से करें। दूसरी चीज मैंने ये कही है कि स्वामित्व के निराकरण का आरंभ इस देश में हम जमीन से करेंगे, क्योंकि ये देश किसानों का देश है। और तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वो यह है कि हम संपत्ति के निराकरण का आरंभ शहरों में ट्रस्टीशिप से करेंगे। ट्रस्टीशिप का मतलब है जो मालिक हैं और जो मजदूर हैं इनके भेद को मिटाने की तरफ कदम बढ़ाना। कौन कौन से कदम उठाने होंगे, इसमें पहला और अंतिम दोनों कदम ये होंगे कि मालिक और मजदूर का भेद नहीं रहेगा। अब ये भेद न रहे इसके लिए जो मजदूर हैं उनको कारखानों की तीन बातों में शामिल करना होगा। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी। दूसरा डिसीशन, निर्णय। और तीसरा इनिशिएटिव, अभिक्रम। अभिक्रम, निर्णय और दायित्व, जिम्मेवारी। इन तीनों में धीरे धीरे मजदूरों को शामिल करना होगा। यह संपत्ति के निराकरण का तरीका होगा, दूसरा तरीका हो नहीं सकता है। सवाल ये पूछा गया है कि क्या इसमें से हिंसा नहीं होगी, अगर हिंसा होगी तो क्रांति नहीं होगी। बहुत विचार के बाद मैं इस निर्णय पर पहुंचा हूं कि अब जीवन के किसी भी क्षेत्र में कोई क्रांति हिंसा से नहीं हो सकती। हिंसा से रगड़ झगड़, दंगे हो सकते हैं, संहार हो सकता है, लेकिन समाज परिवर्तन नहीं हो सकता। तो सवाल है
कल्याणकारी काम से अगर शांति नहीं प्राप्त हो सकती,
कल्याणकारी काम से क्यों नहीं प्राप्त हो सकती? हो सकती है, अगर कल्याणकारी काम का के पीछे हमारी नीयत, हमारा मंशा यह हो कि इसमें से समाज क्रांति आनी चाहिए। एक उदाहरण दे दूंगा दान का। दान अगर करना है तो गरीबी चाहिए। जब तक गरीबी नहीं होगी, दरिद्रता नहीं होगी, तब तक दान हो ही नहीं सकता। अब समाज में अगर आप दान की संस्था को आवश्यक माने तो गरीबों को दान मिलेगा, कल्याण होगा, लेकिन उसमें से गरीबी का अंत नहीं होगा। सवेरे आज मैं क्या है सोशल सर्विस की फैकल्टी में गया था, और मेरी उम्र में कभी ऐसे अवसर नहीं आए जैसे आज आया। नए अनुभव होते हैं। वहां जाकर भी मैं उन लोगों से बोल नहीं सका, क्योंकि उनसे बोलता तो यहाँ नहीं बोल सकता। अब मुझ में इतनी शक्ति नहीं रह गई। तो उन लोगों से एक बात जो कहना चाहता था, वो यही कहना चाहता था कि सेवा का, समाज सेवा का उद्देश्य ये होना चाहिए कि समाज सेवा की आवश्यकता न रहे। समाज में कोई ऐसा तबका न रहे, कोई ऐसा समुदाय न रहे जिसे सेवा की आवश्यकता है, लेकिन जिसने सेवा को ही अपना धर्म मान लिया हो तो उसको समाज में कुछ दुखी लोगों की आवश्यकता हमेशा रहेगी। तो उसको संयोजन ऐसा करना पड़ेगा कि समाज में कुछ लोग दुखी हमेशा रहें जिसमें समय सेवा के लिए अवसर रहे। अब आपके ध्यान में आ जाएगा कि कल्याणकारी कार्य दुख निवारण का कार्य हमेशा क्रांतिकारी नहीं होता, क्रांतिकारी हो सकता है अगर उस पद्धति से किया जाए।
दूसरा ये था कि वांट्स बढ़ाने से काम बढ़ेगा,
जी हाँ,
वो करेक्ट है कुछ है।
हम अपनी आवश्यकताएं बढ़ाएं तो काम अधिक मिलेगा और इस तरह से समाज की प्रगति होगी। आवश्यकताएं बढ़ाने से अगर काम अधिक मिलता है तो मेरी तरफ से कोई हर्ज नहीं, लेकिन आवश्यकताएं बढ़ाने से अगर यंत्रों को काम मिलता है और मनुष्य बेकार हो जाते हैं तो मेरी आपत्ति है।
ये फैमिली प्लानिंग एक प्रायोरिटी,
हाँ, फैमिली प्लानिंग को मैं प्रायोरिटी नंबर वन मानता हूँ। कुटुंब नियोजन आवश्यक होना चाहिए, आवश्यक से मतलब अनिवार्य, कंपलसरी होना चाहिए, लेकिन उसमें जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए।
विध्वंस तरफ जई रहा छे, सत्वगुण वृद्धि माटे आटला बधा प्रयत्नो थया पण कई छे ते थतुं लागतुं नथी, उल्टो कई गुण घट्या होय एवुं ज लागे छे, हता तेने त्यां छीए तो શું આપણે છે તે આમથું ખોટું તો નથી એ કરતા ને ખોટે રસ્તે તો નથી ચડી ગયા ને આ છે, અને આપણે છે તે ખોટા ખોટી ફિલોસોફીની પાછળ ખોટા વિઝનની પાછળ તો નથી ને આ છે।
મેને આપસે કહે દિયા કે ઇસમેં સે જીતના ઈશ્વર કામ છે ઉસકા ઉત્તર મેં નહીં દે સકતા, ઓર ઉસને ક્યો દુનિયા બનાઈ વો જાને, કે મેં કહી નહીં સકતા। लेकिन इन्होंने ये मान लिया है कि उसने दुनिया इसलिए बनाई कि सत्व गुण का विकास हो। मित्रों, सत्व गुण मैं समझता नहीं, ये सत्व रज तम क्या है मुझे मालूम नहीं। मैं ऐसा मानता हूं कि जीवन का उद्देश्य जीवन का विकास है, जीवन का विकास है उसके फैलाव में। जीवन इस संसार में इस सृष्टि में जितना बढ़ेगा और जितना फैलेगा, अब उसे आप सत्वगुण कहिए या कुछ भी कह लीजिए, ये मुख्य जीवन का उद्देश्य है। जीवन के लिए किसी दूसरे उद्देश्य की आवश्यकता नहीं है। अब ये क्यों नहीं हो रहा है, इसी की तो खोज है, इसमें रुकावट कौन सी चीज कर रही है। तो मैंने आपको अपने भाषणों में बताया कि रुकावट करने वाली चीजें तीन मुख्य हैं, सत्ता संपत्ति और शस्त्र, ये प्रतीक हैं। इसलिए संपत्ति और स्वामित्व का निराकरण, सत्ता के केंद्रीकरण का निराकरण और शस्त्र हमेशा के लिए दुनिया से उठ जाए, शस्त्र न रहे उपकरण ही रहे, हथियार न रहे औजार ही न रहे, इस तरफ कदम बढ़ाना पड़ेगा। ये आज तक क्यों नहीं हुआ, आज तक ऐसा किया नहीं गया। किसी धर्म में यह नहीं कहा है कि दुनिया में अमीरी गरीबी नहीं रहेगी, दुनिया में हथियार नहीं रहेंगे और दुनिया में राज्य संस्था नहीं रहेगी। ये तो मार्क्स के बाद शुरू हुआ कहना। इसलिए मैं सारे धर्म प्रवर्तकों में मार्क्स को बहुत श्रेष्ठ मानता हूं। उसने इन तीन चीजों को कहा जो किसी धर्म में आज नहीं है, तो आज तक क्यों नहीं हुआ, कभी कहा ही नहीं गया, इसलिए नहीं हुआ।
जात पात तोड़ने का क्या उपाय है? क्या ऐसे सिग्नेचर लेने चाहिए, प्लेजेस लेने चाहिए जो कहे कि मैं ब्राह्मण नहीं, हरिजन नहीं, ख्रिस्ती नहीं, ऐसे कुछ कहे ही नहीं? और जो हमारी जनता परिषद, समाज सेवा मंडल, यूनिवर्सिटी आदि है, उसके सदस्य होने के लिए ऐसे कोई प्लेज अनिवार्य किया जा सकता है क्या?
ये इसमें ऐसा है, महाराष्ट्र में एक बहुत बड़े साहित्यिक थे आचार्य अत्रे। हर सभा में उठकर वो कहते थे कि मैं ब्राह्मण नहीं हूं, देखो मेरे जनेऊ भी मैंने फेंक दिए हैं और चोटी भी नहीं है, फिर भी उनको कोई वोट नहीं देता। तो आप सिग्नेचर लीजिए, लेकिन सिग्नेचर से ये समस्या हल नहीं होगी। मित्रों, जाति का अंत करने का एक ही उपाय है और वो उपाय है कि सजातीय विवाह बंद किए जाए, इसके सिवा कोई उपाय नहीं। आप सिग्नेचर्स वगैरह ले सकते हैं, उसमें नुकसान कुछ नहीं।
चालू सत्ताकांक्षी राजकारणी नेताओं सामान्य प्रजाजन भलू नहीं करी शके तो बीजा कौन करशे? एवा लोको सत्ता पर केवी रीते आवी शकशे? चूंटणी सिवाय बीजो कोई रस्तो छे? सत्ता स्वार्थना प्रतिकारनो संगठित संघर्ष वर्ग विग्रह सिवाय बीजो कयो रस्तो? संगठन संघर्ष में हिंसा अनिवार्य के नहीं? बापूना सत्याग्रह में केटलाओ ने लाठी गोली जेल जवाब पड़ी सौ पड़ू, ये हिंसा अनिवार्य हती खरी?
इसमें सवाल दो तीन मिले हुए हैं। पहला सवाल है कि कौन करे? अगर राजनीतिक यानी पॉलिटिशियन तो कर नहीं रहा है तो कौन करे? नागरिक करे, और यही विषय रहा है मेरे भाषणों का। इसको नागरिक को करना चाहिए क्योंकि जीवन का की समस्या उसकी है। दूसरा क्या सवाल है उसमें मैं भूलता हूँ, इसलिए पूछ रहा हूँ।
ये वर्ग विग्रह अनिवार्य है क्या या और कोई उपाय है?
अब वर्ग विग्रह का ये जो प्रश्न है, इसके बारे में मैं एक निवेदन आप लोगों से करूँ, प्रश्नकर्ता से करूँगा कि वर्ग की व्याख्या वो करें। वर्ग किसे कहना चाहिए? मार्क्स के आने से इसकी कोशिश हुई, लेकिन अब तक कोई व्याख्या इसकी हो नहीं सकी वर्ग की। किसे हम वर्ग कहें? मैं सिर्फ इतना ही कहता हूं कि जिनको समाज परिवर्तन की आवश्यकता है, ऐसे लोगों की संख्या समाज में अधिक है। 90% नहीं तो 80% या कम से कम 70% लोग ऐसे हैं जिनको आज के समाज में सुख नहीं, उनको वर्ग परिवर्तन, उनको समाज परिवर्तन की आवश्यकता है। अब उनके हाथ में क्या है? सत्ता को बदलना है। उनके हाथ में क्या है? संयोजन को बदल सकते हैं। उनके पास वोट ऐसी शक्ति है जिसमें कोई उनको हाथ उठाने की जरूरत है, हाथ चलाने की भी जरूरत नहीं। लेकिन हमने उनको भ्रम में रखा कि हाथ उठाने से कुछ नहीं होगा, डंडा चलाना पड़ेगा। तो डंडे से तो उनकी क्रांति, उनका समाज परिवर्तन हो नहीं सकता है, उनके हाथ में यह चीज है। तीसरी बात यह पूछी है कि सत्याग्रह में बहुतों को लाठी गोली वगैरह खानी पड़ी, ये हिंसा हुई, ये हिंसा हुई, लेकिन वो सत्याग्रहियों की तरफ से नहीं हुई। शांतिमय आंदोलन की मर्यादा यह है कि शांतिमय सत्याग्रही हिंसा को सहता है, करता नहीं। यहां से हमारा आरंभ है। तो वो हिंसा अनिवार्य थी कि नहीं थी, ये तो हमारी सत्याग्रह में जितनी प्रेम की शक्ति होगी उस पर निर्भर है। हमारा सत्याग्रह जितना शुद्ध होगा, हिंसा उतनी कम होगी, प्रतिपक्षी की तरफ से भी। बस ठीक है। और इसको जितना समय देना
जरा एक पूछ ही लो, क्या ऊपर सुधी दादा नो अवाज संभाल छे? एक सवाल है दादा, मैं यह शरीर ही सिर्फ हूँ, मेरा पुनर्जन्म होने वाला नहीं है, आत्मा परमात्मा ईश्वर की कोई हस्ती है ही नहीं, ऐसा मुझे लगता है, क्या यह विचार सही है गलत है?
मैं नहीं जानता।
अच्छा, एक ये प्रश्न है, अध्यात्म के जो महापुरुष हमारे देश में हुए हैं, जैसे कि रमण महर्षि, श्री अरविंदो, रामकृष्ण परमहंस इत्यादि इत्यादि, उन्होंने नागरिक जागतिक प्रश्नों से ऊपर उठकर आत्मनिष्ठा से वे लोग जीते थे, और अपने अपने स्थान पर मानो तीर्थ रूप बनकर जिज्ञासुओं का पथ प्रदर्शन करते थे। पूज्य बापू और जेपी ने कर्मयोगी की निष्ठा से अपना पूरा जीवन आखिरी दम तक राष्ट्र को समर्पित करके निष्काम भाव से देश को नया प्राणदान दिया। पूज्य विनोबा जी में न तो उपरोक्त महापुरुषों जैसी अध्यात्म निष्ठा दिखती है और न तो पूज्य बापू जैसी कर्मयोगी की जीवन निष्ठा, क्योंकि इमरजेंसी के समय उन्होंने भारत माता के सपूत के नाते अवमानना प्रदर्शित की। आप इस विचार में अगर कोई दोष हो तो बताइए।
विचार में दोष यह है कि इसमें तुलना है, तुलना नहीं करनी चाहिए। जज करना, तुलना करना हमारा काम नहीं है। अगर विनोबा की बात हमको सही नहीं लगती है तो उनके पीछे न जाएं। मेरा तो आपसे एक निवेदन है कि प्रणाम सबको करें, आज्ञा किसी की न माने। गुरु ग्रंथ और संस्था का प्रामाण्य नहीं रहना चाहिए, आत्म प्रामाण्य रहे। आत्म से मतलब बुद्धि, अपनी बुद्धि।
ये वो है लंबे वाली चिट्ठी,
उसमें से सिर्फ जो काम की चीज होती
है। एक सवाल यो छे के लोक पोतानी शक्ति नहीं समझते, ए बात खोटी छे। लाच आपनारा ने लेनारा एमा
समझ गया मैं।
जी हाँ,
फिर ये खोटी चीज नहीं है मित्रों। लोगों में शक्ति है, उसका भान अगर उनको होता तो इस देश की जो परिस्थिति है वो कभी नहीं आती। परिस्थिति क्या है कि ये जितने घूसखोर हैं, जितने डंडे वाले हैं, जितने तिजोरी वाले हैं, जितने कुर्सी वाले हैं, ये सब के सब उस साधारण मनुष्य के भरोसे जी रहे हैं। इनको उसने बनाया है, इनकी प्रतिष्ठा के जो साधन हैं वो उसके बनाए हुए हैं। मैं बाजार में जाकर 250 रुपये का जूता खरीदता हूं, मैं प्रतिष्ठित माना जाता हूं, लेकिन जो उसका बनाने वाला है वो प्रतिष्ठित नहीं माना जाता। अब मुझे बताइए, बरतने वाला बड़ा है कि बनाने वाला बड़ा है? ये जो सामान्य पुरुष मनुष्य है, ये इस समाज का विधाता है, लेकिन वो जानता नहीं है कि मैं विधाता हूं। इसलिए उसको जागृत करने की आवश्यकता है। मैं ऐसे क्रांतिकारी चेतना कहता हूं, रेवोल्यूशनरी कॉन्शियसनेस। अब इसमें दूसरा एक प्रश्न है, उसको अभी देता हूं। रेवोल्यूशनरी कॉन्शियसनेस किसमें पैदा होती है? जिसको समाज परिवर्तन की आवश्यकता होती है प्रायः उसमें वो पैदा नहीं होती। क्यों नहीं होती मैं नहीं जानता हूं, केवल आपके सामने वस्तु स्थिति रख रहा हूं। गुलामों के गुलामी का अंत करने का आंदोलन किसी गुलाम ने शुरू नहीं किया, गरीबों की गरीबी का अंत करने का आंदोलन मार्क्स ने शुरू किया जो खुद मजदूर नहीं था, स्त्रियों की गुलामी का अंत करने का आंदोलन किसी स्त्री ने शुरू नहीं किया। क्यों नहीं हो सका? ये समाज में जो वर्ग सुखी रहता है उस वर्ग में समाज परिवर्तन की कल्पनाएं और स्वप्न शुरू होते हैं। ऐसा न होता तो शायद महाभयानक स्थिति होती। तो ये ईश्वर की कृपा है, अगर ईश्वर की नहीं मानते हो तो आप नियत नीति की बहुत सुंदर योजना है कि जो तबका समाज का सुखी होता है, संपन्न होता है, उसी में चेतना पैदा होती है मुट्ठी भर आदमियों में, कभी कभी एक आध आदमी में। इसलिए ये आदमी आउटसाइडर कहलाता है। आउटसाइडर उसी समाज में रहता है, उस समाज के संस्कार भी हैं, उस समाज में से बहुत कुछ उसने पाया है, लेकिन कुछ उसके अपने व्यक्तित्व में ऐसी चीजें होती हैं जो समाज की परंपरा और इतिहास में नहीं होती। ऐसे व्यक्ति आते हैं और उनमें से क्रांति की चेतना पैदा होती है।
लोक समिति नीचे से ऊपर करवाने बात है तो पछी वडोदरा अहमदाबाद में क्या है?
अब लोक समिति का भी यही हाल है, ये वडोदरा अहमदाबाद की चीज है ही नहीं और है भी। वडोदरा और अहमदाबाद में कल आप मैंने कहा था कि यहाँ पर भी मजदूर हैं, झोपड़ियों में रहने वाले लोग हैं, सड़क की पटरियों पर सोने वाले लोग हैं। आप ये क्यों समझते हैं कि आप अंतिम लोग नहीं हैं? लेकिन आरंभ गांव से करना होगा, ये सही चीज है। देहात से करना होगा आरंभ, लेकिन करेगा कौन? जिसमें कॉन्शियसनेस है, जिसमें वो चेतना आई है। आज मुझसे सनत बात कर रहे थे, हरिवल्लभ बात कर रहा था। अब ये कोई आदिवासी नहीं है और कोई देहात में रहने वाले मजदूर भी नहीं है, लेकिन अपनी जो चेतना है इस चेतना को लेकर वो वहां जाएंगे और वहां की चेतना को सिर्फ प्रकाशित कर देना है, सुलगा देना है और वहां से फिर अपने को हटा लेना है। उनके संरक्षक नहीं बनना है, उनके उद्धारकर्ता नहीं बनना है। तो इसलिए ये जो समितियां हैं, लोक समितियां, जहाँ कॉन्शियसनेस है वहां से शुरू होंगी और लोगों में जहाँ चेतना जगानी है वहां पहुंचेगी, शहर में भी और गांव में भी।
एक तो देहात में जाने की बात कही है दादा,
हाँ वो कही है,
और
दो बातें कही है और मैं बता,
और एक ये गांधी वाला समाज उर्जीकृत था इसलिए गांधी जी ये सफल हुए, या गांधी जी के कारण समाज उर्जीकृत?
मैंने इसका जवाब दे दिया। समाज कुछ हद तक विकसित होता है तो उस महापुरुष को अवसर मिलता है, लेकिन उस महापुरुष की चेतना में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो समाज में उस समय नहीं होते, इसलिए वो महापुरुष समाज को ऊपर उठाता है और ऊपर उठने की आकांक्षा उस समाज में सुप्त अवस्था में रहती है, उसका वो लाभ, उससे लाभ उसको मिलता है। समाज और समाज का नेता, इन दोनों में एक पारस्परिकता होती है, म्यूचुअलिटी, उस म्यूचुअलिटी में से आता है।
जनता पार्टी के भिन्न घटकों में
जन कुछ था ना, और ईशा आवास क्या था,
वो त्यागी ने भोगा, वो तो दादा आपने कहा
ठीक है,
वो उस प्रकार के लोग जब तक नहीं बढ़ेंगे समाज में।
जनता पार्टी के भिन्न घटकों में जनसंघ के साथ आरएसएस की प्रवृत्ति बढ़ रही है, उससे देश को खतरा नहीं है क्या, विशेष करके हिंदू मुस्लिम के बारे में? और विनोबा जी के गोहत्याबंदी के उपवास के संकल्प के बाबत आपकी क्या राय है? हम लोग जो सर्वोदय की प्रवृत्तियों से संलग्न है, उनका क्या कर्तव्य है?
अब मित्रों, मेरे पास कोई राय तो है नहीं, मैं समस्याओं को समझता हूँ और क्या उनके बारे में करना है उसको निर्णय करता हूँ। तो अब ये जनता पार्टी के घटकों में अगर जनसंघ की प्रबलता है तो क्यों? दो कारण हैं, एक तो संख्या है, दूसरा अनुशासन है और तीसरा इमरजेंसी के वक्त का त्याग है। अब आप रोते क्यों हैं? ये सब शक्ति होते हुए भी उसे प्रभाव नहीं रखना चाहिए, सत्ताकांक्षा नहीं रखना चाहिए, ये मैं जनसंघ से कहूंगा। लेकिन रोने वाले से तो ये कहूंगा कि तुम क्यों नहीं करते हो, तुम में अगर दम नहीं है तो इसमें दम है। अब मैं अपनी जगह हूं, दादा धर्माधिकारी शिकायत यह है कि कामा पहलवान मजबूत क्यों है, मैं क्या बोलूं, इसका कोई जवाब है? ये कैसी इंपोर्टेंट शिकायत है, इस शिकायत में कोई जोर नहीं है। हमको दूसरी शक्ति बढ़ानी चाहिए, उनकी शक्ति का उपयोग वो कर रहे हैं।
लोक समितियों मार्फत है अत्याचार नहीं, राष्ट्रीय
दूसरे
कहता विनोबा उपवास होंगे।
हाँ, अब विनोबा के उपवास के संबंध में मुझे ये कहना है कि मैं विनोबा की मांग को बिल्कुल सही मानता हूं। उपवास के विषय में मैंने राय नहीं बनाई है क्योंकि उपवास के साधन को मैं बहुत समझता नहीं हूं, गांधी के जमाने से भी। मैंने ये माना है कि उपवास का साधन ऐसा है जिसका निर्णय व्यक्ति अपने लिए कर सकता है, उसकी वो कहाँ तक उचित है और कहाँ तक उचित नहीं है इसका निर्णय देने वाला मैं नहीं हूँ। हाँ, इतना मैं कह सकता हूँ कि मैं उपवास नहीं करूँगा क्योंकि मैं उसे सही साधन नहीं मानता, लेकिन विनोबा की मांग को मैं सही मानता हूँ। कोई मनुष्य ये मांग करे या कोई देश ये संकल्प करे कि हमारे मनुष्य समाज में एक पशु अवध्य होगा, पहला कदम मनुष्य अवध्य होगा, दूसरा कदम मनुष्य तर प्राणियों में से एक प्राणी अवध्य होगा, तो मैं समझता हूँ ये सांस्कृतिक प्रगति है। इसलिए विनोबा के मांग को मैं उचित मानता हूँ और उसका जितना समर्थन कर सकूंगा करूंगा।
लोक समितियों मार्फते अत्यारनी राष्ट्रीय बैंकों ने हड़ताल केवी रीते हल करी शकाय? सौथी वधारे पगारोनु धोरण होवा छता लगभग रोज बैंकोना बाणे हड़ताल देखाय छे, ते योग्य छे? कायदाथी हड़तालो ने गैरकायदेसर ठरावे तो केवू?
अब ये लोक समितियों की हिम्मत का सवाल है। नागपुर में हमारे कुछ मित्र गए थे प्रदर्शन करने के लिए, उनके सामने छात्र युवा संघर्ष वाहिनी के लोग, तो उनको पीट पीट कर उनकी हड्डी नरम कर दी इन्हीं बैंक की कर्मचारियों ने। तो मैंने आपसे कहा था कि जब तक साधारण नागरिक हिम्मत नहीं करेगा तब तक समाज का कोई न कोई तबका उसको हमेशा दबाता रहेगा। लोक समितियों में ये हिम्मत होगी तो वो करेंगी और हिम्मत नहीं होगी तो आपको करना चाहिए जिन्होंने सवाल पूछा।
इंदिरा जी पुत्र प्रदान थाय एवो प्रयत्न करे, व्याजबी छे, अढळक संपत्ति एकठी करी अने गरीबी ना बेली केवड़ावू योग्य छे? विनोबा जी कटोकटी अने सरमुखत्यारी ना आशीर्वाद आप्या एटले लोको तेमने सरकारी संत कहे छे, संत तो गमे तेवा संजोगोमां सत्य ने पड़खे ज रहे छे।
अब इसमें कोई ये तो मेरा मेरी राय पूछते हैं, जवाब यही है, इट्स अ मैटर ऑफ ओपिनियन, आपकी और मेरी राय भिन्न हो सकती है। इंदिरा जी ने अपने बेटे को प्राइम मिनिस्टर बनाने की कोशिश की या नहीं की, ये मैं कैसे जानता हूं। जो बाहर तथ्य आए हैं उन पर से अनुमान हो सकता है, लेकिन एक संविधान से बाहरी सत्ता उभरने लगी थी संविधान के प्रशासन के क्षेत्र में, वो अवांछनीय थी। विनोबा के बारे में मैं इतने कह सकता हूं कि विनोबा ये मानते थे, और ये मानने का उनको अधिकार था, कि इस देश की विदेशी नीति की परिस्थिति में यह आवश्यक है कि इस देश की केंद्रीय सरकार किसी प्रकार से कमजोर ना हो, तो यह राय रखने का उनको अधिकार था। इससे भिन्न राय रखने का मुझे अधिकार था, लेकिन विनोबा को अपनी राय रखने के अधिकार से मैं कैसे वंचित कर सकता हूं। विनोबा यह मान सकते हैं कि मैंने देश का नुकसान किया, जैसे मैं मान सकता हूं कि उनकी भूमिका से देश का नुकसान हुआ। क्या वो ये नहीं मान सकते कि दादा ने जो भूमिका स्वीकार की थी उससे देश का नुकसान हुआ? वो मान सकते हैं, इसलिए मैंने कहा कि ये मान्यता की भिन्नता है। मेरे मन में कोई, आपके मन में जैसे सरकारी संत वगैरह है, ऐसे मेरे चित्त में है।
आ प्रश्न ने छोड़ी पण शकाय छे, जीवनोपयोगी प्रत्येक क्षेत्रे व्यापेला भ्रष्टाचार थी छूटवा सामान्य मानवीय शुं करवू जोईए?
उसे भ्रष्टाचार नहीं करना चाहिए। सामान्य मानवीय अगर एक दूसरे को कोई भ्रष्टाचारी कहते हैं, गांव में मैं गया था तो उन्होंने कहा कि यह पूरा गांव भ्रष्टाचारी लोगों का है, ये सब बुरा गांव इस देश में है ही, यहाँ सब आदमी भ्रष्ट हैं। तो मैंने एक ही सवाल किया आपको छोड़कर, तो हर आदमी अपने को छोड़कर ही सोचता है, उतना सोचना छोड़ दे। भ्रष्टाचार है तो मैं भी हूँ भ्रष्टाचारी, कल से नहीं रहूंगा, इतना संकल्प करे।
Will emergency be favored in India under present state of affairs? When there are so many problems requiring immediate attention, why Morarji is after prohibition?
इसमें दो सवाल हैं। आज की परिस्थिति में क्या इमरजेंसी की आवश्यकता, क्या इस देश के लोग मांग कर सकते हैं? तो मित्रों, पूंजीपति तो सबसे पहले मांग करेंगे, क्योंकि उनके कारखाने बंद हो रहे हैं। यूनिवर्सिटी के संचालक भी मांग कर सकते हैं, क्योंकि वहां कोई काम नहीं हो पा रहा। इसकी जड़ कहाँ है? इसकी जड़ इस चीज में है कि हम केवल दो ही चीजों का विचार कर सकते हैं। एक तो निरंकुशता, अराजकता, या फिर अनियंत्रित सत्ता, जिसे अब तानाशाही कहते हैं। इस देश का नागरिक क्या इन्हीं दो पर्यायों के बीच रहेगा? क्या कोई तीसरा पर्याय नहीं है जो उसके अपने हाथ में है? यह सवाल बहुत ही पराक्रम शून्यता से पैदा होता है। आप देख रहे हैं कि इंदिरा जी की लोकप्रियता और प्रतिष्ठा बढ़ रही है, अब इससे शिकायत कौन करे? क्यों शिकायत हो? अधिकार है उन्हें भी, लेकिन सोचने की बात तो हमारी और आपकी है। क्या जनता पार्टी और इंदिरा जी ये दोनों किसी कारण से अलग हो जाएं तो फिर ये देश शून्य है? भारत माता बांझ है? ये समस्या इंदिरा जी की और जनता पार्टी की है कि इस देश के नागरिक की है? वो कहे कि इस देश में हम इमरजेंसी भी नहीं आने देंगे और तानाशाही भी नहीं आने देंगे। क्या इस देश का तरुण ये कह सकता है? इसकी आवश्यकता है। दुनिया में 1% आदमी, 1% आदमी बुरा होता है और 1% आदमी बहुत अच्छा होता है। 98% आदमी इंडिफरेंट होते हैं, इसलिए यह सब चल रहा है। डेमोक्रेसी में उस 98% आदमी को एक्टिव होना चाहिए। डेमोक्रेसी में और तानाशाही में अंतर क्या है? ऑटोक्रेसी, डिक्टेटरशिप इज नॉमिनेशन बाय द करप्ट फ्यू एंड डेमोक्रेसी इज इलेक्शन बाय द इनकॉम्पिटेंट मेनी। अब इसमें से मैं इनकॉम्पिटेंट मेनी को चुनने को तैयार हूं।
ये रहा प्रोहिबिशन वाला बोला, इसके पीछे लगे जबकि बहुत महत्वपूर्ण सवाल है।
ये अपनी अपनी निष्ठा का सवाल है। स्वराज्य आते ही गांधी ने पहली चीज ये कहा कि 1 घंटे के लिए भी मेरे हाथ में अगर इस देश का शासन आए तो पहला कानून मैं प्रोहिबिशन का बनाऊंगा। मोरारजी अब उस निष्ठा को मुख्य मानते हैं, आप नहीं मानते हैं तो मोरारजी को हटा दीजिए, आप जाइए।
कुछ लोग अपने को सर्वोदय कार्यकर कहलाते हैं पर वे राजकारण से परे नहीं है और पक्षीय राजकारण में भाग लेते हैं, क्या ये ठीक है?
उनको सर्वोदय कार्यकर्ता कहना छोड़ दीजिए, उसका यह उपाय है। आपसे किसने कहा कि उन्हें सर्वोदय मानिए? कोई छाप तो नहीं है ना मानिए सर्वोदय, लेकिन उसको राजनीति में हिस्सा लेने का अधिकार नहीं है, यह तो कोई नहीं कह सकता। ये भले ही आप कहें कि सर्वोदय की जो संस्थाएं हैं उनको उसे बर्खास्त कर देना चाहिए, उसको डिसमिस कर देना चाहिए, तो ये उन संस्थाओं का प्रश्न है, मेरा नहीं है। भगवान की कृपा से मैं कहीं सदस्य नहीं हूं।
लोक समिति अने सरकारना संबंधोनी भूमिका शी हशे? लोक समिति जे जुदी जुदी विचारसरणी वाला नागरिकोनी बनेली हशे ते सरकारनी कामगीरीनुं मूल्यांकन केवी रीते करी शकशे? आ मूल्यांकन ऊपर बधा सभ्योनी एकमती साधी शकाशे?
अब इसमें ये सब मिले जुले प्रश्न है, इसमें से सरकार के साथ क्या संबंध होगा इतना ही मैं आपसे कहना चाहता हूं। सरकार के हम सहयोगी होंगे, आश्रित नहीं होंगे। सरकार की सहायता लेंगे, सरकार के सहारे नहीं चलेंगे। अब ये भिन्न भिन्न मत जो हैं, आग लग जाए अगर किसी के घर में तो भिन्न मत रहेंगे, किसी ने लगाई हो जानबूझ कर तो उसका मतभेद रहेगा, लेकिन वैसे मतभेद नहीं रहेंगे। मित्रों, समाज के आज की परिस्थिति में 90% सवाल ऐसे हैं जिनके विषय में बहुत अधिक मतभेद नहीं रह सकता। भूख है, गरीबी है, हिंदू मुसलमान का समस्या है, अछूतों की समस्याएं हैं, ये सारी समस्याएं ऐसी हैं जिनके विषय में कोई मतभेद होना नहीं चाहिए। तो लोक समितियां जहां मान्यता होगी उन प्रश्नों को उठाइए।
भारत में गरीबी है कोई एक जाति की विशेषता नहीं रही, उजड़िया कौम में दारुण गरीबी हो छे, तो पची रिजर्वेशन की बात कहते हैं कि क्यों फिर ऐसे रिजर्वेशन हो? आर्थिक दृष्टि से जो गरीब हो उनके लिए उनको उनके साथ न्याय हो नहीं होगा, तो इस प्रकार की जो विषय
समझ गया हूँ, इसका जवाब मैंने कल दे दिया। मित्रों, जो समाज आर्थिक दृष्टि से गरीब हैं उन समाजों के पास दूसरी साधन है। ये जो समाज है अछूतों का, ये जन्म के कारण ही बहिष्कृत है, जन्म के कारण ही जिस जो जिसमें डिसेबिलिटी है, अयोग्यता जन्म को लेकर है, उनको जन्म के कारण ही रिजर्वेशन देना चाहिए। और जिनको रिजर्वेशन की आवश्यकता नहीं है ऐसे समाजों को छोड़ देना चाहिए। तो उसमें से जितना तबका ऐसा रह जाएगा कि उनको संरक्षण की आवश्यकता है, अपने आप मिलेगा। ये वातावरण शुरू यहां से हो कि जो ऊपर का तबका है उसको सरकारी नौकरियों से अलग हो जाना चाहिए। एक सवाल बुनियादी आप अपने से पूछिए, क्या इस देश में इस गवर्नमेंट सर्विस द ओनली सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर द पुअर? एंड सिंस द नंबर ऑफ पुअर पीपल इन दिस कंट्री इज ओवरवेलमिंग, डू यू वॉन्ट टू कन्वर्ट दिस कंट्री इन टू ए नेशन ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज? इसको इस दृष्टि से सोचिए तो शायद आपको जवाब मिलेगा।
गरीबी अने बेकारी ना झड़पी उकेल मांगता प्रश्नों अने गांधीवादी उकेल नी धीमी चाल ए वच्चे वास्तविक रीते मेल केवी रीते बेसाड़वो? तमे तो कहो छो के आपणी पासे समय ज नथी।
ये ठीक कहा है, धीमी चाल है तो गांधी नहीं है उसमें। गांधी धीमी चाल वाला नहीं था। एक साल में एक वर्ष में स्वराज उसने कहा। अब एक के 27 हो गए लेकिन 27 से अधिक नहीं हुए। अगर आप इस देश के हर आदमी को अन्न वस्त्र घर किसी दूसरे उपाय से दे सकते हैं तो मेरी टोपी आपके चरणों में होगी। हम किसी साधन के कायर नहीं, गांधी के नहीं, किसी के नहीं। हमारे सामने इस देश का मनुष्य है, उसको आप अगर यंत्र से खिला सकते हैं, खाना कपड़ा और मकान यंत्र से दे सकते हैं, काम न भले ही न दे, मुझे काम की भी परवाह नहीं है।